मुख्यम त्वम अनंतम। कोई तपस्या करता है, तपस्या हमें शुद्ध बनाएगी। सोने को अग्नि में रखने से सोना तपेगा, तो जो भी नॉन सोना है, नॉन गोल्ड, जो भी सोना नहीं है, सोने के अलावा और धातु मिश्रित हुए हैं, वो सब जल जाएगा और शेष रह जाएगा अलग से चमकता हुआ तप्त कांचन गोल्ड, प्योर मोल्टन गोल्ड। उसी प्रकार तपस्या की जो ज्वाला है, अग्नि है, क्योंकि तपस्या में कुछ थोड़ी असुविधा हो सकती है, प्रातःकाल में जल्दी उठना तपस्या है, कई सारे, कुछ तपस्या मन की है, कुछ वाचा की है, कुछ शरीर की है, तपस्या, तो ये तपस्या हमको तपाएगी, शुद्ध बनाएगी। और उस स्थिति में जो आनंद प्राप्त होता है वो शाश्वत आनंद है, वो फिर आपकी संपत्ति हो गई, आपने उस आनंद को कमाया सदा के लिए, अब आनंद ही आनंद। बिना तपस्या किए एन केन प्रकारेण धन कमाए दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा, और उस धन से, अर्थ से काम की प्राप्ति, शॉपिंग किया, मॉल गए, न्यूक्लियस मॉल गए, पता नहीं कहा है लेकिन इस पढ़ने में आ रहा है, द मॉल कल्चर का प्रवेश हो रहा है, हम कुछ ज्यादा पीछे नहीं रहे, नकल करने में हम सबसे आगे हैं। तो इस अर्थ से जो काम प्राप्ति होगी और उससे जो सुख, क्षणभंगुर सुख प्राप्त होगा, वो सुख ही हमारे दुख का कारण होगा। देखिए क्या क्रम है, धन अर्जन किया एन केन प्रकारेन, फिर काम वासना के तृप्ति के लिए सारे साधन जुटाए, नाम का सुख, क्षणभंगुर सुख प्राप्त किया, यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते हरिभव, और फिर उस सुख का परिणाम दुख में होता है। सुख और दुख मानो दो सीजन है, शीतकाल और फिर गर्मी के दिन, तो ये शीतोष्ण, ये दो सीजन, ये दो ऋतु है हमारे जीवन में, लेकिन एक ही ऋतु का सदैव हम लोग अनुभव कर सकते हैं, आनंद नाम के ऋतु का, जो सुख और दुख से परे है, ऊंचा है। सुख तो इंद्रिय के स्तर पर हो सकता है, आनंद आत्मा का स्वभाव है, आत्मा को अधिकार है आनंद प्राप्ति का। वो आनंद प्राप्त कैसे किया जाए, तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम वृषभ देव, अपने सौ पुत्रों को, जिन पुत्रों में सबसे बड़े हैं भरत महाराज, उनको ये उपदेश कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये उपदेश है उनका, हे पुत्रों क्या करो, तपस्या करो, शुद्ध बनो, और जो शुद्ध बनोगे तो आनंद ही आनंद। तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम ब्रह्म सौख्यम त्वम अनंतम, अनंत सुख प्राप्त होगा। ऐसा सुख ऋषि मुनियों को प्राप्त होता है। जो आनंद वो ना ही आमीरी में, जो आनंद वो आनंद ना ही अमीरी में, क्या okay? जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। और मेरा नाम तो जो फकीर को आनंद मिलता है, जो आनंद फकीर करे, जो आनंद फकीर करे वो आनंद नाही अमीरी में। क्योंकि फकीर को तो कृष्ण प्राप्त है, जो आनंद के भंडार है, आनंद का खजाना है, आनंद के स्रोत है। कृष्ण और भी बातें कहे हैं इन मुनियों को, यशात्म बुद्धि कुण पे त्रिधातुके स्वधी कलत्रादि शिव भौम्य इज्जधि ये तीर्थ बुद्धि सलिले न कर्चित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः। इस वचन में भगवान साधु का महत्व, मनुष्य के जीवन में साधु का महत्व, या वो मनुष्य भी जो तीर्थ यात्रा में गया है उसका साधु के प्रति क्या फर्ज है, या साधु की क्या भूमिका है, साधु की क्या उपयोगिता है तीर्थ क्षेत्र में। वे सभी तीर्थ क्षेत्र में तो है ही, कुरुक्षेत्र में तो सारे ऋषि मुनि पहुंचे हैं, जनता पहुंची है, तो भगवान यहां महात्मा बैठे हैं, उनका महात्म्य भी इस वचन से वे कह रहे हैं। यशात्म बुद्धि कुण पे त्रिधातु के, जो व्यक्ति सोचता है कि ये मेरा जो शरीर है, ध्यान से सुनिए, वैसे सुन ही रहे हो, जो व्यक्ति सोचता है कि ये शरीर ही मैं हूं, देहात्म बुद्धि जिसको आप सुने हो, देहात्म बुद्धि, देह को ही आत्मा समझना, बस आत्मा कोई अलग से नहीं, देह ही आत्मा है, ऐसा जो समझता है वो देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति, जो अपने शरीर को जो कुण पे त्रिधातु के कफ पित्त वायु नामक तीन धातु का बना हुआ ये शरीर कि मैं हूं बस, और तो कुछ है नहीं। भस्मी भूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत्। जब राख हो जाएगी कफ पित्त वायु के बने हुए शरीर की, तो पुनरागमन की क्या बात कर रहे हो, राख बन गई तो फिनिश, सब समाप्त हो गया, ये पुनर्जन्म नहीं है, पाप को भविष्य में फल भोगना होगा, ऐसे डर की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा प्रचार करने वाले चार्वाक मुनि भी हुए हैं, और उस परंपरा के कई सारे इस संसार में मिलेंगे। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उनका ये प्रचार है, जब तक जीते हो सुख से चैन से जीवो, और चैन से जीने के लिए क्या करो, घृतम पिबेत, घी पियो, घी, कम से कम अच्छा है कि मुनि घी पियो के शराब पियो नहीं कह रहे। ऐसी संस्कृति या संस्कार अगर कुछ गलत सलत कह भी दे, लेकिन कलयुग के प्राणी जो पीने के लिए कह रहे हैं उसका स्मरण भी वो नहीं कर रहे, तो ठीक है घी पीना है, पैसे जेब में नहीं, वो कहते ऋणम कृत्वा उधार लो, कोई उधार नहीं दे रहा, चोरी करो, एन केन प्रकार, एन क्या, यावत जीवित सुखम जीवित, जब तक जीना है सुख से जियो, क्योंकि शरीर तो तीन धातु का बना हुआ है, ये सारा का सारा अज्ञान है समझना, नहीं तो आप समझो कि महाराज को अच्छा तत्व ज्ञान समझाया आज। स्वधी कलत्रादि शुभम इज्जधि, और जिसकी धी बुद्धि लगी हुई है किसमें, कलत्रादिशु अपनी अपने परिवार में, बस पत्नी है, देह पत्नी है, अपत्य है, बंधु है, बांधव है, बस यही सब कुछ है, इन्हीं के लिए जीना, इन्हीं के लिए मरना। भव में इज्जधि, और जिस देश में मैंने जन्म लिया है वही देश पूजनीय है, किसी के लिए भारत पूजनीय, तो फिर किसी के लिए अफगानिस्तान, तो किसी के लिए तुर्कस्तान, तो किसी के लिए खालिस्तान, तो किसी के लिए अपने अपने देश की पूजा कर रहे हैं। ये देहात्म बुद्धि का ही एक्सटेंशन है या विस्तार है। और आगे ये तीर्थ बुद्धि सलिले न करिचित, और ऐसे लोग जब वे आते हैं तीर्थ यात्रा में आते हैं, ये शात्म बुद्धि वाले, स्वधी वाले और कलत्रादि शुभौ में इज्जधि वाले, अभी आ गए तीर्थ बुद्धि, तो उनकी तीर्थ बुद्धि किस में, सलिले बस जल में, तीर्थ यात्रा में आना है पवित्र कुंड में, नदी में डुबकी लगाओ चंद्रभागा में, फिर थोड़ा दर्शन किया नहीं किया, प्रसाद खरीद लो, बैक टू होम, घर लौटो। यह एक कार्य महत्वपूर्ण है, तीर्थ यात्रा में करने का एक महत्वपूर्ण कार्य है, यह प्रभु उनका उसकी याद दिला रहे हैं। वे तीर्थ यात्रा में ही है, और हम लोग भी तीर्थ यात्रा करते हैं या करनी चाहिए, भगवान स्वयं तीर्थ यात्रा किए, तो तीर्थ यात्रा में जाओगे तो नंबर वन बिजनेस कहो या मुख्य कार्य क्या है, तद जनेषु अभिज्ञेषु, वहां के जो अभिज्ञ जन है, वहां के जो साधु संत है, जो उस धाम का महात्म्य जानते हैं, वहां की लीला जानते हैं, शास्त्र के परायण है, सदाचारी संत महात्मा है, उनको मिलना चाहिए, उनका संग करना चाहिए, उनके चरणों में बैठ के कृष्ण की लीला का, राम की लीला का श्रवण कीर्तन करना चाहिए, कुछ जिज्ञासा करनी चाहिए, ये बताइए जी, हमें ले चलिए, यहां की लीला सुनाइए, वो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये करना चाहिए। स्नान जरूर कीजिए, वो तो करते ही है बिना बताए, लेकिन एक बात नहीं करते हैं, कृष्ण कहे 5000 वर्ष पूर्व कहे, जिस कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश सुनाए बाद में महाभारत की युद्ध के समय, उसके पूर्व का ये भगवान की भेंट है कुरुक्षेत्र की, उस वक्त ऋषि मुनियों को उपदेश देते वक्त, आप मुनियों को ऋषियों को कई लोग भूल जाते हैं, तो तीर्थ यात्रा में आप लोगों को मिलना चाहिए, ये सारी जो जनता आई है उनको मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। और ऐसे नहीं जो मिलते हैं वे कैसे हैं, भगवान ने कहा स एव गोखरः, बस उनकी तुलना भगवान ने गधे के साथ की है, गोखरा या बैल है या गाय गधा है, साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्रे कह, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। इस उपदेश के उपरांत अब शनै शनै तैयारी होती है एक महान यज्ञ की। द्वारकावासी की ओर से वसुदेव जी यज्ञ संपन्न करेंगे। बड़ी तैयारियां है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी यज्ञ है, हम भी शायद यहां यज्ञ करते लेकिन इस मंच के व्यवस्थापक शायद हमको अग्नि जलाना संभव नहीं होगा, तो भी अगर हम यज्ञ करना चाहेंगे तो कैसा यज्ञ कर सकते हैं हम लोग, हाँ? एनी सजेशंस, कैसा यज्ञ? कोई तैयारी तो नहीं की है, पुरोहित नहीं है, घी नहीं लाए, सामग्री नहीं है, जप यज्ञ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जप जप, हरे राम 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 हरे हरे। ये यज्ञ है, इसको महान यज्ञ कहे भगवान। गीता के 10वें अध्याय में इस जप को यज्ञ कहे भगवान। यज्ञानाम जप यज्ञों सी, सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ ये जप यज्ञ मैं हूं कहते भगवान। आप भी यज्ञ करना चाहोगे तो बस आपको, हमको तो मंत्र का उच्चारण कोई ब्राह्मण को नहीं जानते, या कोई मुहूर्त पता नहीं कब है नहीं है, हम विधि विधान नहीं समझते इस यज्ञ का। बस इसीलिए कलयुग में सरल विधि है यज्ञ करने की, एक तो बैठ के, फिर आप अकेले हो माला लो, माला पर जप करो। ये जो भगवान है कृष्ण बलराम की जोड़ी, गौर नित्यानंद गौर निताय, इन्होंने जप करके दिखाया संसार को, स्वयं भगवान अपने हाथ में झोली लिए गोमुखी लिए और जप किया करते थे। कलयुग का यह धर्म है, कलौ तद हरि कीर्तनार्थ, भगवत प्राप्ति का ये मार्ग है।